أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس خطبے اور دعا کے ساتھ ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے سورہ ملک کے معروف مسائل کا، جو کہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، کیونکہ ہم نے سورہ حجرات مکمل کرنے کے بعد پھر سورہ ملک شروع کر دی تھی اور تھوڑا سا ہم اس میں آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن ایک لمبی چھٹی آئی ہے عید الاضحیٰ کی، تو اس کے بعد ریویو کر کے آگے بڑھتے ہیں. تو معروف مسائل میں سب سے پہلے جو فضائل لکھے تھے سورہ ملک کے، تو اس میں فرمایا تھا کہ یہ سورہ ملک جو ہے یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے، اور ہیں تو اس کے اندر صرف 30 آیتیں. اس نے فرمایا کہ 30 آیتیں یہ قیامت کے روز سفارش کریں گی، یہاں تک کہ اس کے پڑھنے والے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گی. تو سورہ ملک کے فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، یا عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، تو یاد کر لینا چاہیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو. تو اتنی بڑی صورت نہیں ہے، 30 آیتیں ہیں، اس کے اندر آسانی سے یاد کی جا سکتی ہیں. پھر اس میں جو پہلی آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی سے فرمایا کہ برکت ہے اس ذات کے ساتھ، تبارکا یا تبارکو یہ برکت سے نکلا، اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا یا زیادہ ہونا. اور اس کو ہم اس انداز میں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں ظاہری طور پر کم بھی نظر آتی ہو، ظاہری طور پر کسی چیز کی مقدار کم نظر آتی ہو، لیکن وہ ضروریات کے لیے کافی ہو جائے، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی برکت ہو گئی. کیونکہ ضروریات کے لیے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑھوتری ہو گئی، حالانکہ ظاہری طور پر وہ کم تھی، تو اس وجہ سے اس کو برکت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ برکت ہے کہ کم چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ بیدہ الملک، کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہوا علی کل شئین قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہاتھ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا جہاں ذکر ہوتا ہے قرآن میں اور دیگر اسی طرح کے اعضاء کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ یا اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، ساکھ کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے جسم سے متعلق جو کلام قرآن کریم کے اندر آتا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا جسم ہے ہاتھ پیر چہرے اور پنڈلی والا جسم، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بھی جسم ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی بھی شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی بھی شے نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ ڈکلیئر کر دیا نا کہ لیسا کمثلہ شیء، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا قرار دینا، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جیسے ہیں हम जैसी हमारी शक्ल सूरत है, तो अल्लाह ताला वैसे नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के जैसे कोई और चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हाथ पैर के जो अल्फाज आते हैं, तो इन अल्फाज का फिर हमारे उलमा ने यही मतलब बयान किया कि अल्लाह ताला की कुदरत का हाथ। ठीक है, और वज जो चेहरे का लफ्ज आया, तो वज से मुराद जो है वो अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला की खुशी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अल्लाह ताला के इन सिफात का जिक्र किया जाता है। ठीक है, इसके मुताबिक कोई सवाल है किसी को? दे या दहिल्लाही या वजहिल्ला वगैरह से क्या मुराद है? अच्छा, अगर है तो बीच में आप लिख के पूछ सकती हैं, रेज हैंड करके बता भी सकती हैं कि आपको कोई सवाल है तो आप पूछना चाहती हैं। उसके बाद फिर अल्लज़ी खलक अल-मौत वल-हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला की जात तो वही है कि जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया। ठीक है, तो अब इसके तहत हमने ये सारी डिस्कशन पढ़ी थी कि मौत और हयात की हकीकत क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि भाई हयात का तो एक वजूद हमें समझ में आता है। ठीक है, कि भाई हम जिंदा हैं, हमारा वजूद है, हम चलते फिरते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो हयात कहलाती है। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर मौजूद हो तो उसका पैदा किया जाना या तख्लीक किया जाना समझ में आता है। ठीक है ना, कोई चीज़ मौजूद हो, एग्जिस्ट करती हो, तो उसकी तख्लीक समझ में आती है। लेकिन मौत तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, यानी मौत कोई जिंदगी की तरह की चीज़ तो है नहीं कि जिसका एक जिस्म हो या जिसके अंदर जो है वो चलत फिरत होती हो। तो जिस चीज़ का वजूद ही नहीं है, तो उसकी तख्लीक से क्या मुराद है? ठीक है, ये बात समझ में आती है आप लोगों के? ये बात समझ में आ रही है कि भाई जिंदगी की तो एक वजूद है ना, तो उसकी तख्लीक तो समझ में आती है, लेकिन मौत का तो वजूद ही नहीं है। वो तो जिंदगी के ना होने को कहा जाता है। मौत क्या चीज है? जिंदगी का ना होना। ठीक है, तो भाई ना होना, तो इसकी तख्लीक का क्या मतलब है? तो इसके बारे में फिर सारी डिस्कशन उन्होंने लिखी थी कि ऐसा नहीं है कि मौत जो है वो अदम का नाम हो। ठीक है, कि जिंदगी का ना होना मौत है, बल्कि हकीकत क्या है कि मौत का भी एक वजूद है, मौत का भी एक वजूद है। ठीक है, और वो वजूद क्या चीज है? वो ये है कि रूह और बदन का ताल्लुक मुनकता हो जाता है, और रूह को एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक मकान से, यानी चले आपसे एक सवाल भी कर लेते हैं ताकि आपकी भी जरा नींद टूटे, राइट? कि एक मकान से दूसरे मकान, तो भाई कौन से मकान में मुंतकिल किया जाता है जिसको मौत कहते हैं? क्या क्या नाम है इन मकानों के, जिस मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल किया जाता है मौत में, तो इन दोनों मकानों के क्या नाम है? जी, कोई बताएगा आप में से? किस मकान में मुंतकिल किया जाता है? आलम अरवाह, मौत की बात कर रहे हैं। आपका सवाल, आपका जवाब गलत है। मौत में किस मकान से किस मकान में मुंतकिल किया जाता है? दोबारा सोचें, सवाल समझ में आया है कि नहीं? इन मकानों के नाम नहीं पता जिन मकानों में हम रहते हैं और हमें जाना है? जहां हम रहते हैं उसका नाम क्या है? जिंदगी हमारी किस मकान में गुजरती है? आलम अरवाह, तो आपने आलम का गलत नाम ले दिया ना, लेकिन अगर सही नाम ले तो उसको क्या कहेंगे, आलमे, जिस मकान में हम हैं उस मकान को क्या कहते हैं, रूहों का मकान। आलम अरवा तो रूहों का मकान है ना, जहां पे सिर्फ रूहें हैं। हम क्या फकत रूह हैं? क्या आपने कहा कि हम आलम अरवा में रहते हैं? हम बरजख में रहते हैं, हम मरने के बाद हम बरजख से आगे चले जाएंगे दूसरे मकान में। अभी हम जिस मकान में रहते हैं उसका नाम आलम बरजख है। क्या नाम है उस मकान का जहाँ हम रहते हैं? जी दुनिया है ना, हम आलम दुनिया में रहते हैं। तो जब मर जाएंगे तो फिर कहाँ चले जाएंगे, किस मकान में मुंतकिल हो जाएंगे? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 1 घंटे की क्लास है, इसके अंदर जरा तवज्जो इस तरफ कर लें, या बाकी लोगों को कुछ भी नहीं पता? ये तो किंडरगार्टन लेवल की बात है। जी आलम दुनिया से आलम बरजख में मुंतकिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मुंतकिल होना है ना, तो ये तो एक वजूदी चीज है, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मौत के लिए भी तखलीक का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि मौत भी एक वजूदी चीज है, एक एग्जिस्टेंशियल चीज है मौत भी, ठीक है। हाँ अलबत्ता ये कह सकते हैं कि हर इंसान की जो मौत होती है, जब तक वो जिंदा है तो उस वक्त तक उसकी मौत मौजूद नहीं है, ठीक है, उसकी मौत का वजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही मौत का फरिश्ता आता है और रूह को जिस्म से निकालता है, तो उस वक्त उसकी मौत भी वजूद में आ जाती है, ठीक है, उसकी मौत भी वजूद में आ जाती है। यानी इस दुनिया से निकलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और आलम बरजख में जाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, क्योंकि वजूदी चीज है, तो इस वजह से इसकी भी तख्लीक का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने फिर मौत और जिंदगी की तख्लीक करी और उसकी वजह भी बता दी, ली यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला जांचे कि तुम में से कौन अहसन अमल करने वाला है, ठीक है, ज्यादा खूबसूरत अमल करने वाला तुम में से कौन है, ठीक है। अब ये अहसनु अमला, ज्यादा खूबसूरत अमल, तो ये क्या चीज होती है भाई, ज्यादा खूबसूरत अमल? इसका भी कोई जवाब दे आप में से अगर, कि ज्यादा खूबसूरत अमल कौन सा अमल होता है? जी अहसन व अमला का क्या मतलब होता है? आपकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है वही बता दें। उलमा क्या कहते हैं, अगर किसी को मालूम है तो वो बता दें, और अगर ये नहीं मालूम कि उलमा क्या कहते हैं, तो अपने तसव्वुर में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अहसन व अमला, तो आप ये भी बता सकते हैं। सबसे ज्यादा अल्लाह की अताअत करने वाला हो। तो अहसन अमला का मतलब ये होता है कि वो अमल के जिसमें अल्लाह ताला की अताअत हो, ठीक है, वो अहसन अमल होता है, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा अमल करने वाला शख्स होगा ना, ये वो होगा जो कि अल्लाह ताला की अताअत करने वाला हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला की अताअत ये करते कैसे हैं? तो कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि आपको बस बताना है कि अताअत का मतलब होता है हुक्म मानना, ठीक है ना, उर्दू जुबान का ही लफ्ज है ना अतात करना, तो इसी को उर्दू जुबान में आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हुक्म मानना, ठीक है ना, अतात का ही मतलब होता है ना। तो इस तारीफ यानी हुक्म मानना, ठीक है, इससे क्या चीज पता लगती है कि अतात होने के लिए सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत है वो क्या है, अतात होने के लिए किस चीज का होना शर्त है, वो है हुक्म। हुक्म का होना शर्त है अतात के लिए, ठीक है भाई, अगर हुक्म ही नहीं होगा तो अतात किस चीज की करेंगे आप, ठीक है ना, अगर हुक्म नहीं हुआ तो फिर आप कौन सा हुक्म मानेंगे, हुक्म ही नहीं है तो फिर हुक्म मानना कैसे करेंगे आप, बात समझ में आ रही है, अगर हुक्म ही नहीं है तो फिर आप हुक्म मानने का अमल कैसे करेंगे, अतात का अमल कैसे करेंगे, ठीक है, तो अतात के लिए शर्त क्या चीज है, हुक्म का मौजूद होना, ठीक है, अगर कहीं हुक्म मौजूद ही ना हो, ठीक है, अगर कहीं हुक्म मौजूद ही ना हो तो फिर आप अतात कर सकते हैं, हाँ या ना, चार ही तो स्टूडेंट्स हैं, मेहताब साहबा, नुसरत साहबा, रानी सफदर साहबा, शना साहबा, चारों सुन रही है बात करो, तो क्या इसका सवाल, इस सवाल का जवाब हाँ में होगा कि नहीं होगा, नहीं में होगा, एक ही स्टूडेंट बाकी तीन की तरह, अगर हुक्म ही नहीं है तो अतात हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, अतात हो ही नहीं सकती। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या तहज्जुद पढ़ने का हुक्म है, जी आप जरा अगर छोड़ दें बाकी तीन को जवाब देने दें, कॉमन सेंस टाइप के सवाल है ना ये, आम मुसलमान को इनके जवाब मालूम होने चाहिए, ठीक है ना, तो सवाल ये है कि क्या तहज्जुद पढ़ने का हुक्म है, जी बाकी तीन खवातीन है हुक्म, माशाल्लाह, कहाँ पर है जी हुक्म तहज्जुद पढ़ने का, कहाँ पर है हुक्म, तो ये भी बता दें हमें भी पता लग जाए, कौन सी किताब में पढ़ा है आपने तहज्जुद पढ़ने का हुक्म, अच्छा वजीफे पढ़ने का हुक्म है कि 200 मरतबा आयत करीमा का विर्द, ठीक है, इसका हुक्म है, कोई और बताए, अभी तो नुसरत साहबा ने वैसे तहज्जुद के हुक्म का सोर्स बताना है हमें कि ये कहाँ पर है तहज्जुद के पढ़ने का हुक्म, ठीक है, तो बताए ना जरा तहज्जुद पढ़ने का कहाँ पर हुक्म लिखा हुआ है, और फिर अब ये बता दें कि ये वज़ाइफ जो हम पढ़ते हैं तो इसका हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है वजीफे पढ़ो, जी जी शना साहिबा, वजीफे पढ़ने का हुक्म है, अच्छा चलो इसका किसी को जवाब पता ही नहीं है, ठीक है ना, या पता हो या ना हो जवाब देना नहीं चाहते, अच्छा तीसरा सवाल, जी पर्दा करने का हुक्म है, या नहीं है, पर्दा करने का हुक्म है या नहीं, जी ठीक है, पर्दा करने का हुक्म है, ठीक है, झूठ ना बोलना, ठीक है, झूठ ना बोलना इसका हुक्म है कि नहीं है, जी ठीक है, तो चार चीजें हमने आपके सामने रखी। एक था तहज्जुद की नमाज पढ़ना, इसका हुक्म नहीं है। नुसरत साहिबा का जवाब गलत था, ठीक है, तहज्जुद पढ़ने का हुक्म नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म था, हमें नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से वजीफे पढ़ने का हुक्म नहीं है, ठीक है। पर्दा करने का हुक्म है, ठीक है ना, और झूठ ना बोलने का हुक्म है, ठीक है। तो ये चार चीजें आपके सामने रखी है ना, तो अब ये बताएं कि इन चारों में से अतात किन के अंदर होगी और किन के अंदर नहीं होगी, राइट। अतात का मामला किन इन चार में से कौन सी चीजें जब कोई करेगा तो वो अतात करने वाला कहलाएगा, और जिनको करने से वो अतात करने वाला नहीं कहलाएगा, ठीक है। चार चीजें क्या थी? तहज्जुद की नमाज पढ़ना, वजीफे पढ़ना, पर्दा करना और झूठ ना बोलना। तो इन चार में से कौन से वाले काम करने से अतात होगी और कौन से करने से अतात नहीं होगी? हाँ, पर्दा करना, क्या पर्दा करने से अतात होगी? ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपका ये मतलब है कि पर्दा करने से अतात होगी, झूठ ना बोलने से अतात होगी या नहीं होगी? जी, झूठ ना बोलने से अतात होगी। वजीफे कोई पढ़े तो उससे अतात होगी कि नहीं होगी? वजीफे पढ़ने से अतात होगी? नहीं होगी, ठीक है, वजीफे पढ़ने से अतात नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको पढ़ने से रोक नहीं रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मैं आपको पढ़ने से रोक रहा हूं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अतात में ये शुमार होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से तहज्जुद पढ़ना, तहज्जुद पढ़ने से अतात होगी कि अतात नहीं होगी, ठीक है। तो वक्त को बचाने की खातिर खुद ही जवाब दे देता हूँ कि तहज्जुद पढ़ने से अतात नहीं होगी, लेकिन मैं आपको रोक नहीं रहा तहज्जुद पढ़ने से, ठीक है। आप बेशक तहज्जुद पढ़ें, लेकिन मैं आपको रोक नहीं रहा तहज्जुद पढ़ने से, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि तहज्जुद पढ़ने से अतात नहीं होगी, ठीक है। तो अतात की बात हो रही है यहां पर सिर्फ, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अहसनु अमला, अहसनु अमला जो है ना, इसका ताल्लुक अतात के साथ है, अतात के साथ है, ठीक है। यानी जिसके अंदर अल्लाह का हुक्म है उसको अगर किया जाएगा तब वो बंदा अहसनु अमला वाला बंदा कहलाएगा, ठीक है। तो पांच वक्त की फर्ज नमाजें पढ़ रहा है और औरत है तो पर्दा कर रही है, और इंसान है चाहे मर्द हो जाए औरत, झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो इस तरह के जितने भी अल्लाह ताला के हुक्म हैं उन पर अमल करने वाला जो है वो अहसनु अमला में शामिल होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक शख्स है जो कि तहज्जुद रोजाना पढ़ता है और रोजाना खूब सारे वजीफे पढ़ता है लेकिन झूठ भी बोलता है, ठीक है, गीबतें भी करता है और इंसानों को अजियतें भी देता है, ठीक है ना, और धोखे भी देता है, तो ऐसा शख्स जो है वो अहसनो अमला वाला कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। ये शख्स रोजाना तहज्जुद पढ़े, रोजाना वजीफे पढ़े, लेकिन ये कभी भी अहसनो अमला वाला शख्स नहीं बन सकेगा, ठीक है, ये बात समझाना मकसूद था, ठीक है। तो इस वजह से हमने तो काफी सारी तफसील के साथ ये बात समझाई है, लेकिन मशायख ने सिर्फ इतना से लिख दिया कि अहसन व अमला का मतलब होता है तकवा इख्तियार करना, ठीक है। लेकिन वो तकवा का लफ्ज जो है ना, ये चूंकि बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए समझना कि भाई तकवा चीज क्या होती है, तो इस वजह से ये बात जरा समझानी पड़ती है कि तकवा का मतलब होता है अताआत करना, ठीक है। नफले पढ़ना और नफली इबादतें करना ये तकवा में शामिल नहीं। نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہو العزیز الغفور, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے. تو اگر ہم اطاعت نہیں بھی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی, تو احسن و عملہ میں تو ہم شامل نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ جس نے کہ سات آسمانوں کو طبقہ طبقہ کر کے بنایا, تہ بہ تہ بنایا. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, آپ رحمان کی اس خلق میں جو ساری کی ساری تخلیق اللہ تعالیٰ نے کری ہے اس میں آپ کوئی تفاوت نہیں پائیں گے. تفاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی فالٹ نہیں پائیں گے, کوئی فرق سے ترجمہ کیا, لیکن فرق سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ کوئی جو ہے نا مسٹیک یا خلل آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, فرجع البصر هل ترى من فطور, تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو تم نا دوبارہ سے ڈالو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر, کیا تمہیں کوئی اس کے اندر دراڑ نظر آتی ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی یہ جو تخلیق آسمانوں والی تخلیق کی بات ہو رہی ہے نا, تو آسمانوں کے اوپر تم دوبارہ نظر ڈالو, کیا تمہیں اس کے اندر کچھ پھٹان یعنی پھٹاپن نظر آتا ہے تمہیں, کہیں ٹیئر نظر آتا ہے تمہیں کہیں؟ ثم پھر ارجع البصر, اپنی نگاہوں کو پھر جو ہے وہ ان آسمانوں کے اوپر ڈالو, کرتین دوسری دفعہ, ینقلب الیک البصر, تو تمہاری نظر تمہاری طرف لوٹ آئے گی. ٹھیک ہے نا, یعنی تمہاری نظر تمہاری طرف لوٹ آئے گی کیا مطلب, کہ تم جو تمہارا جو ویژن ہے تم دیکھو گے دور آسمان کی طرف اپنی نگاہوں سے, تو تمہاری نگاہیں جو ہیں وہ تمہارے منہ سے نکل کر کے تمہارے چہرے سے نکل کر کے آسمانوں تک تو نہیں چلی جاتی نا, یعنی جو آئیز ہیں ہماری وہ آئیز تو ہمارے چہرے پر ہی رہتی ہیں, تو آئیز جو ہے وہاں جا کر کے لوٹ کے نہیں آتی, بلکہ جو ہمارا یعنی جو فوکل بنتا ہے فوکس, ٹھیک ہے, تو وہ فوکس جو ہے نا وہ ایک طرف ہمارا جب پڑتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے, تو پھر جب ہم وہاں سے اپنی نگاہ کو ہٹاتے ہیں تو پھر وہ فوکس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو اسی کو فرما دیا کہ فرجع البصر یعنی ثم کیا ینقلب الیک البصر, کہ تمہارا جو فوکس ہے ٹھیک ہے وہ تمہاری طرف لوٹ آئے گا. خاص ان کا مطلب کیا, کہ تم نے جو نگاہ ڈالی تھی نا تو تم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے اندر کوئی دراڑ نظر آ جائے تمہیں, خلل نظر آ جائے, لیکن تمہیں اپنے اس ارادے میں ناکامی ہوئی. ٹھیک ہے, تمہیں اپنے اس ارادے میں ناکامی ہوئی تو اس وجہ سے تمہاری جو یہ نگاہ ہے وہ خاص ان لوٹے گی, ناکام ہو کر کے لوٹے گی تمہارے پاس. وہ ہوا حسیر, اور وہ تھک جائے گی, یعنی تم غور کرتے رہو گے کہ تمہیں اس کے اندر کوئی خلل نظر آ جائے, لیکن اس کو کرنے سے نا صرف تمہاری آنکھ جو ہے وہ دکھ جائے گی, تمہارا دماغ جو ہے وہ بوجھل ہو جائے گا, تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی, لیکن تمہیں کوئی دراڑ نہیں ملے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور تحقیق کے ہم نے آسمان کو مزین کر دیا, آسمان دنیا کو مزین کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو فزیکل ورلڈ ہے, ٹھیک ہے, آسمان دنیا سے مراد کیا ہے کہ جس ارتھ میں ہم رہتے ہیں نا, یعنی یہاں پہ دنیا سے مراد کہ یہ جو مادی دنیا ہے جس کے اندر زمین بھی آ جاتی ہے, پہاڑ اور چرند پرند اور درخت اور بادل, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے اندر ہیں, اور اسی طرح سے جو ستارے ہیں, چاند ہے, سورج ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ اس مادی دنیا کا حصہ ہے. تو اسی مادی دنیا کا جو آسمان ہے, اس آسمان کو ہم نے ستاروں سے مزین کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر اس آسمان کی بات نہیں ہو رہی جس آسمان میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے رہتے ہیں और जिनके अंदर जो है वो दरवाजे होते हैं, और उन आसमानों में बाकायदा अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें भी रहती हैं। ठीक है, जैसे पहला जो आसमान है वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मौजूद है। ठीक है, फिर दूसरे आसमान के ऊपर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह मौजूद है। ठीक है ना, तो ये वो जो जो आसमान है ना, सात आसमान, ये अलग चीज़ है, वो आसमान दुनिया नहीं है। यहाँ पर अल्लाह ताला आसमान दुनिया की बात कर रहे हैं कि इनको, इस आसमान दुनिया को हमने सितारों से मुजयन कर दिया। अगर आप किसी शहर से अपने बाहर निकल करके बिल्कुल ही तारीक मुकाम पे जा करके आसमान को देखें रात के वक्त, तो आपको आसमान जो है वो ऐसा झिलमिलाता हुआ नजर आएगा तारों से। ठीक है, कराची शहर में रहने वाले या किसी और मुकाम पे, शहर के मुकाम पे रहने वाले जो है वो आसमान की इस खूबसूरती से महरूम रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने सितारे बनाए हैं, तो इन सितारों से एक काम अल्लाह ताला ये लेते हैं, वजअलनाहा नुजूमन लिश्शयातीनी, के इनको हमने यानी इस्तेमाल किया शयातीन को मारने के लिए, रजम करने के लिए। ठीक है, अब ये जो है वो शहाबे साकिब भी हो सकते हैं, क्योंकि शहाबे साकिब भी जो है वो आसमान दुनिया के अंदर यानी मौजूद है। ठीक है, तो शहाबे साकिब से भी ये काम लिया जा सकता है, जैसे कि कुरान के अंदर किसी मुकाम पे इसका तस्करा भी है। और इसके अलावा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो सितारे हैं, तो सितारे जो हैं ये तो जिस तरह हमारा सूरज है वो भी एक सितारा है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे सितारे हैं। ठीक है, तो इन सितारों के अंदर से कोई आतिशी मादा निकलता होगा, जो कि अल्लाह ताला जो है वो शयातीन को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो शयातीन को मारने के लिए वो जो आतिशी मादा है, वो फरिश्ते इन सितारों के अंदर से निकाल करके शयातीन के ऊपर फायर करते हैं। ठीक है ना, गोया कि वो कोई जैसे कोई बम टाइप की कोई चीज़ होती है, मिसाइल टाइप की कोई चीज़ होती है। ठीक है, और वो मिसाइल जो है वो इन सितारों के के अंदर से फरिश्ते निकालते हैं, और उस मिसाइल को जो है वो इन शयातीन के ऊपर दागते हैं। ठीक है, जैसे वो रॉकेट लॉन्चर होता है ना, तो इस तरीके से रॉकेट लॉन्चर को फायर करते हैं जैसे इन शयातीन के ऊपर। वो आतदना लहुम अजाब सईर, और हमने तैयार कर रखा है उनके वास्ते एक दहकती हुई आग का अजाब। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी जो तफसीर थी वो ये कि ये जो शयातीन हैं, ये यानी हमारी दुनिया की ही मखलूक है। ठीक है, यानी जिस तरह से हम जमीन पर रहते हैं ना, उसी तरीके से ये जिन भी जमीन पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जिन जो है वो जमीन के अलावा इनकी दस्तरस जो है वो आसमानों तक भी होती है। ठीक है, यानी ये आसमान दुनिया के अंदर भी मौजूद होते हैं, यानी जिसको हम स्पेस कहते हैं ना, खला। तो ये शयातीन जो है, यानी शयातीन से यहाँ पर मुराद जिन है। ठीक है, तो ये जिन जो है वो इस अर्थ में भी रहते हैं, और ये जिन जो है वो उड़ते फिरते भी हैं, यानी इनको अल्लाह ताला ने उड़ने की सलाहियत दी है। ठीक है, उड़ने से मुराद ये नहीं जैसे कि परिंदे उड़ते हैं, बल्कि उड़ने से मुराद ये है कि ये गोया के यानी कशिश सकल जो होती है ना, कशिश सकल, ये कशिश सकल से आजाद है। ठीक है ना, ये जमीन की जो कशिश होती है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल, ये इन जिनों को अपनी तरफ नहीं खींचती। तो जिन जो है वो ऊंचे, यानी जिस तरह से एक तैयारा फ्लाई कर सकता है, एक रॉकेट फ्लाई कर सकता है, एक हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकता है ना, उसी तरीके से ये जिन भी फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लाई जो है वो इस दुनिया के जो जो यानी माहौल है उसके अंदर भी ये होते हैं, और इस दुनिया से बाहर भी निकल के खला में भी जा सकते हैं। ठीक है, इन खलाओं के बाद जो है, यानी जब ये खला खत्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये यानी रूहानी आसमान शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये जिन जो है ना, ये इन रूहानी आसमानों में, जिनको के समावात कहा जाता है, सात आसमान। ठीक है, तो इन रूहानी आसमानों में भी ये पहले जा सकते थे, नबी अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले ये उन रूहानी आसमानों में भी जा सकते थे। आसमान दुनिया से बाहर निकल के इन रूहानी आसमानों में, जिन आसमानों में अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें रहती हैं, ये जिन वहां भी जा सकते थे, ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद इन जिनों को का दाखला उन आसमानों में रोक दिया गया, ठीक है ना, इन जिनों का दाखला उन आसमानों में रोक दिया गया। ठीक है, क्यों रोक दिया गया आसमानों में, कोई बताएगा? इन आसमानों में यानी पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान से लेकर के सातवां आसमान, इन आसमानों में जिनों का पहले दाखला ओपन था, ये जा सकते थे ऊपर, लेकिन फिर इनका दाखला रोक दिया गया, उसकी वजह क्या है? जी, कोई बताएगा आपने? अगर रेज हैंड करके लिखना शुरू करें ना तो अंदाजा हो जाएगा कि आप लिख रही हैं, तो फिर आप इंतजार कर लेंगे, वरना मैं इंतजार भी करूँ और कोई लिख भी नहीं रहा, तो चलें फिर मैं अज्यूम करता हूँ कि आप नहीं लिख रही हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि ये जो आसमान है ना, सात आसमान, ये आसमान जो हैं ये फरिश्तों के मुस्तकिल रिहाइश है, ठीक है ना, ये परमानेंट रेजिडेंस है इन फरिश्तों की। ठीक है, तो गोया के इन आसमानों के अंदर फरिश्तों के घर घर समझ लें, ठीक है ना, या दफ्तर समझ लें, ठीक है ना, चले घर नहीं समझें क्योंकि फरिश्तों को घर में कोई बेडरूम की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है ना, यानी बेडरूम वगैरह की जरूरत नहीं, घर 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 क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर सोने की जगह होती है, आराम करने की जगह होती है, और ड्राइंग रूम होता है और किचन होता है, तो ऐसी जगह को हम घर कहते हैं। ठीक है, तो फरिश्तों को तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से ना हम घर का लफ्ज इस्तेमाल करने की बजाय हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? दफ्तर, दफ्तर, वर्क प्लेसेस, यानी ये जो आसमान है ना ये फरिश्तों के दफ्तर है, ये फरिश्तों के वर्क प्लेसेस है। ठीक है, तो दफ्तर के अंदर फिर क्या किया जाता है जी? राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का दफ्तर है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी का दफ्तर है, तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में बैठ के क्या किया जाता है? क्या दफ्तर के अंदर बिल्डिंग बनाई जाती हैं? कंस्ट्रक्शन कंपनी तो बिल्डिंग्स बनाती है ना, तो क्या दफ्तर में बैठ के बिल्डिंग्स बनाते हैं या क्या करते हैं दफ्तर में बैठ के? जी बताएंगे आप लोग, हुक्म पे अमल करते हैं। तो सवाल को जरा पहले समझ तो लिया करें ना कि मैं पूछ क्या रहा हूं। दफ्तर में बैठ के क्या किया जाता है, और इसके लिए आपके सामने एक मिसाल रखी कि किसी तामीराती कंपनी का दफ्तर, ठीक है, तो क्या वो अपने दफ्तर में बैठ करके बिल्डिंगें तामीर करते हैं, दफ्तर के अंदर तामीर करते हैं, बिल्डिंग किधर तामीर करते हैं? हाँ, दफ्तर के अंदर तो नहीं करते ना तामीर, बिल्डिंग तो उन्होंने कहीं दूर तामीर करनी होती है ना, शहर के किसी दूसरे मुकाम में जाके बिल्डिंग तामीर करनी होती है, तो फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी का दफ्तर क्यों होता है? वैसे तो आप खवातीन हैं ना, तो आपको तो ज्यादा नहीं इसका अंदाजा होगा कि दफ्तर में क्या चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी ये कॉमन सेंस की बात है। दफ्तर में क्या काम होता है? दफ्तर में प्लानिंग की जाती है, राइट, प्लानिंग दफ्तर में की जाती है, बिल्डिंग तो कहीं और जाके तामीर होगी, ठीक है ना, बिल्डिंग तो कहीं और जाके तामीर की जाएगी ना, लेकिन दफ्तर में बैठ के उसके लिए प्लानिंग की जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जिम्मे काम लगाया होता है, ठीक है ना, कि भाई जमीन में जाकर के तुम फलाना फलाना काम करो, ठीक है, जमीन में जाके तुम ये काम करो, ये हुक्म अल्लाह ताला ने दे दिया फरिश्तों को, ठीक है ना, जैसे कि कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसने कंपनी के मुलाजमीन को ऑर्डर दे दिया कि तुम फलानी जगह पे जाकर के इमारत तामीर करो, ठीक है, ऑर्डर मिल गया ऊपर से इमारत तामीर करने का कि भाई उस जगह जाके इमारत तामीर करो, लेकिन अब कंपनी के जो मुलाजमीन हैं वो इमारत तामीर करने से पहले क्या करते हैं? वो दफ्तर में बैठ करके उसकी प्लानिंग करते हैं कि ये इमारत हम कैसे तामीर करेंगे,
کتنے دنوں میں تعمیر کریں گے، اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، یہ پلاننگ کدھر ہوتی ہے؟ یہ پلاننگ سائٹ پر نہیں ہوتی، یہ پلاننگ دفتر میں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ کائنات کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ کے جو ورکرز ہیں، امپلائیز، وہ کون ہیں؟ فرشتے، ٹھیک ہے؟ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہوتا ہے کہ زمین پہ جا کر کے فلانا کام کرو، لیکن اس حکم پر عمل کرنے سے پہلے فرشتے آسمانوں میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر کے، ٹھیک ہے، اپنے دفتروں میں بیٹھ کر کے اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جن کیا کرتے تھے؟ یہ جن جو ہے نا وہ فرشتوں کے دفتر میں پہنچ جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کے دفتر میں پہنچ جاتے تھے اور وہاں پر دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ فرشتے کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ باتیں سنتے تھے نا، پھر یہ وہاں سے ان باتوں کو لے کر کے پھر زمین پر آتے تھے اور کاہنوں کو یہ باتیں بتاتے تھے، جادوگروں کو، کاہنوں کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جب ان کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کا فرشتوں کے دفتروں میں داخلہ بند کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ ان کو یہ شہاب ثاقب کے ذریعے سے مار مار کر کے کہ اگر ان شیاطین میں سے کوئی آسمان میں داخل ہونے کی کوشش کرے تاکہ وہ فرشتوں کے دفاتر میں ہونے والی پلاننگ کو سن سکے، تو اس کو یہ مارا جاتا ہے کہ تاکہ یہ انٹر ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ انڈیا کی فورسز جو ہیں وہ پاکستان میں انٹر ہونے کی کوشش کریں تو پاکستان والے ان کو میزائل ماریں گے نا، ٹھیک ہے، کہ بھائی تم ہمارے بارڈر میں انٹر ہونے کی کیوں کوشش کرو، ہم تمہیں میزائل ماریں گے، رائٹ؟ تو اسی طریقے سے فرشتوں کے گھروں میں یا فرشتوں کے دفتروں میں انٹر ہونے کی جب کوشش کرتے ہیں نا یہ شیاطین، تو ان کو میزائل مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ فرشتے آسمانوں میں اپنی پلاننگ مکمل کرتے ہیں اور اب اس کام کو کرنے کے لیے آسمانوں سے نکلتے ہیں اور زمین کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آسمانوں سے نکل کر کے اب دنیا کی حدود میں داخل ہو گئے تاکہ دنیا میں آ کر کے کام کریں، تو اب یہ جو دنیا کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں نا، تو یہاں تک تو شیاطین آ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ شیاطین جو ہیں یہ دنیا میں تو آ سکتے ہیں، ان کا داخلہ تو صرف آسمانوں میں بند کیا گیا ہے نا، لیکن دنیا میں تو بند نہیں کیا گیا ان کا داخلہ، تو اس وجہ سے جب فرشتے دنیا میں آتے ہیں نا، داخل ہوتے ہیں نا آسمان سے، دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور دنیا میں جب یہ تھوڑی آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو ان کی بات چیت جو ہے یہ شیاطین سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں داخل ہونے کے بعد فرشتوں کے آپس میں جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے نا، یہ شیاطین جو ہیں وہ اس بات چیت کو سن سکتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو شیاطین ہیں جن، یعنی کہ یہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ فرشتوں کی باتیں سن سکتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے یہ، ہم تو نہ اڑ سکتے ہیں، رائٹ؟ ہم نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہ فرشتوں کی باتیں سن سکتے ہیں، لیکن جنوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، جن اڑ بھی سکتے ہیں، جن فرشتوں کی باتوں کو سن بھی سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، تو جب فرشتے آسمان، جو کہ ان کے دفتری مقامات ہیں، آسمان کیا ہیں؟ فرشتوں کے دفتری مقامات ہیں، جن میں بیٹھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایگزیکیوشن کی پلاننگ کرتے ہیں، جب پلاننگ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو ایگزیکیوٹ بھی تو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تو ان کو دنیا میں آنا پڑتا ہے، جب وہ دنیا میں آتے ہیں نا، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کی آپس میں کچھ گفت و شنید ہوتی ہے، جب گفت و شنید ہوتی ہے تو فرشتے جو ہے وہ اس کو سن لیتے ہیں، تو سوری جن جو ہیں اس کو سن لیتے ہیں، لیکن وہ گفت و شنید جو ہوتی ہے वो बहुत कम होती है। भाई अब तो काम का वक्त है ना, प्लानिंग का वक्त तो खत्म हो गया, दफ्तर में बैठ के प्लानिंग कर ली, अब साइट एरिया पर आ गए। साइट एरिया समझते हैं ना, जहां पे बिल्डिंग बनानी होती है वो साइट एरिया होता है, ठीक है। तो अब साइट एरिया पर आ गए, तो साइट एरिया पे आकर के अब दोबारा से प्लानिंग तो नहीं करेंगे ना, अब यहां पर आकर के तो बस जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी बातें होती हैं उन बातों को किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो जो थोड़ी सी बातें साइट एरिया के ऊपर इंजीनियर लोग कर रहे होते हैं ना, तो उन थोड़ी सी बातों से भी थोड़ा सा तो आइडिया हो जाता है ना कि जी ये आगे क्या करने वाले हैं, ये आगे क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है ना। इसी वजह से ये जो जिन हैं इनको थोड़ा बहुत फ्यूचर के हालात का पता चल जाता है, थोड़ा बहुत, बहुत कम, लेकिन फ्यूचर के कुछ हालात का इल्म इनको हो जाता है। क्योंकि ये अगरचे के आसमानों में नहीं जा सकते, आप आसमानों में अब नहीं जा सकते कि तफसीली बातें सुन सकें, लेकिन ये जमीन में तो फरिश्तों को सुन सकते हैं ना। तो जमीन में जब फरिश्ते आपस में बात करते हैं तो उन बातों को सुन करके इन शैतान को बहुत थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि जी क्या होने वाला है। अब वो ये बातें जो हैं वो अपने दोस्तों को सुनाते हैं, इंसानों में से जो इनके दोस्त होते हैं उनको आके बताते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना आप देखेंगे कि ये जो काफिर बहुत ज्यादा बुरे जो काफिर होते हैं, ठीक है ना, यानी काफिरों के सरदार, ठीक है, तो ये कभी कभी जो है वो मुस्तकबिल का हाल जो है ना वो ठीक ठीक बता देते हैं, मुस्तकबिल का हाल ठीक ठीक बता देते हैं, लेकिन कभी कभी, ज्यादा नहीं, कभी कभी ऐसा ऐसा हो जाता है। तो वो कैसे बता देते हैं, वो इसी तरह बताते हैं कि उनको इनके जिन दोस्तों ने आकर के बता दिया होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को जो अभी बात बताई है ना, ये यानी मिलियन डॉलर वाली बात है, तो समझ में है किसी के कि नहीं है क्या बता रहे थे। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक कार्टून प्रोग्राम चलता है, ठीक है, अमेरिकन टेलीविजन के किसी चैनल पर एक कार्टून प्रोग्राम चलता है, ठीक है। उस कार्टून प्रोग्राम का नाम पता है, किस कार्टून प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, मुस्तकबिल की बातें बताता है वो कार्टून प्रोग्राम, जी पता है किसी को उसका नाम? एक्चुअली उसके अलावा और भी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा मशहूर है। इस कार्टून प्रोग्राम का नाम है सिम्पसन्स, इसको लिख भी देते हैं सिम्पसन्स, ये कार्टून शो है, ठीक है। लेकिन ये कार्टून शो जो है ना, ये बड़ा मजे का कार्टून शो है, ये वैसा नहीं है जैसे टॉम एंड जेरी वाला कार्टून होता है। ये जो कार्टून शो है ना, ये बहुत ही ज्यादा, यानी इसके अंदर मैच्योर लेवल की बातें होती हैं, अगरचे वो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। एक बाप होता है, एक घराना है, ये सिम्पसन जो है ना एक घराने का नाम है, ठीक है। इसके अंदर एक बाप है, माँ है, इनके जो है वो एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, ठीक है ना, फिर दोस्त होते हैं, और इस तरीके से ये एक घरेलू किस्म का एक माहौल दिखाते हैं इसके अंदर। लेकिन ये लोग जो आपस में बातें करते हैं ना, इन बातों के अंदर बहुत ज्यादा, यानी मैच्योर किस्म की बातें हैं, ये बच्चों का कार्टून नहीं है एक्चुअली, ये बड़ों का कार्टून है, ठीक है ना। इसके अंदर सियासत के ऊपर बातें होती हैं, इसके अंदर जो है वो इश्यूज के ऊपर बातें होती हैं। तो इस सिम्पसन्स कार्टून के अंदर कुछ ऐसी बातें इन्होंने दिखा दी थी आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, जो कि मिन्नो अनमुख बिल्कुल वैसी की वैसी हुई दुनिया के अंदर, ठीक है, यानी एग्जैक्टली जैसा सिम्पसन्स कार्टून के अंदर दिखाया गया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, ठीक है। यानी इतनी एक्यूरेसी थी उसके अंदर
कि अगर आपके सामने वो तस्वीरें रखी जाए ना कि जो दुनिया में हुआ और जो सिम्पसन्स में दिखाया गया था, ठीक है ना, आप दंग रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। ठीक है, तो फिर कैसे उन्होंने दिखा दिया ये चीजें, ठीक है, कैसे दिखा दी उन्होंने? क्या उनको मुस्तकबिल का हाल मालूम था? राइट, नहीं, इनको मुस्तकबिल का हाल मालूम नहीं था। ये सिम्पसन्स कार्टून जो है ये 25 साल से ज्यादा अरसा हो गया इसको चलते हुए, 25 साल से ज्यादा अरसा हो गया। इस सिम्पसन्स कार्टून को लिखने वाले जो लोग होते हैं ना, जो इसकी स्टोरी राइटिंग करते हैं, बड़े बड़े PhD, हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स, MIT के ग्रेजुएट्स, दुनिया की सबसे जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज कहलाती हैं, उनके ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता है सिम्पसन्स के का कार्टून बनाने के लिए, ठीक है, उसका स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ऐसे ऐसे लोग जो है ना बैठ करके इसमें काम करते हैं। तो ये 25 साल से जो एक प्रोग्राम चल रहा है ना, तो अब ये हर प्रोग्राम के अंदर ऐसी बातें बताते हैं, कुछ ना कुछ बातें हर प्रोग्राम में होती हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से टोटल कितनी बातें 25 साल में सच साबित हुई हैं, कितनी बातें सच साबित हुई हैं? प्रोग्राम तो भाई हर हफ्ते आता है, ठीक है ना, शायद हफ्ते में एक दिन आता है ये प्रोग्राम, तो कितने हफ्तों से ये चल रहा है? हजारों हफ्तों से चल रहा है। हर प्रोग्राम में ये कोई ना कोई इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन इन बातों में से कितनी बातें सच साबित हुई हैं? अब तक 15 बातें सच साबित हुई हैं, 15, सिर्फ 15। हालांकि इन्होंने हजारों की तादाद में इस तरह की बातें करी हैं, लेकिन उनमें सिर्फ सिर्फ 15 बातें सच हुई हैं। अब ये जो 15 बातें सच हो गई, तो ये कैसे सच हो गई और बाकी जो है वो सच नहीं हुई? तो उसकी वजह यही है, ठीक है, कि ये जो लोग हैं ना, इनके ताल्लुकात होते हैं शयातीन के साथ, ठीक है ना। अब ये शयातीन जो हैं, ये फरिश्तों के मजालिस में जा करके, जो फरिश्ते अपने काम करने के लिए आपस में कुछ बातें बातें कर रहे होते हैं ना, तो अब ये शयातीन जो है वो वहां पे जा करके टोह लेते हैं, ठीक है, सरगोशियों से, यानी उनकी बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। तो उनसे ना उनको बहुत थोड़ी थोड़ी सी खबरें मिलती हैं, थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि अब ये जो शयातीन है ये आसमानों में तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहरा बिठा दिया, मिजाइल वाला सिस्टम लगा दिया वहां पर, कि अब ये अगर वहां जाने की कोशिश करेंगे तो उनको मिजाइल मारे जाएंगे, ये आसमानों में नहीं जा सकते। तो इस वजह से ना ये फरिश्तों के जो दफातर हैं, उन दफातर में तो जा नहीं सकते, लेकिन साइट एरिया पे तो जा सकते हैं ना, क्योंकि फरिश्तों का साइट एरिया क्या है? ये दुनिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके ना ये जो टोह लेते हैं, सुनते हैं ना, तो इनको थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अब उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर ये लोग ये सिम्पसन्स का कार्टून बनाते हैं, सिम्पसन्स का कार्टून बनाते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादातर जो होती है ना, वो यानी झूठ होती है, यानी ये थोड़ी सी खबर उनको वहां से मिलती है और उसके ऊपर फिर बहुत सारा झूठ ऐड करके प्रोग्राम बनाते हैं, अपना सिम्पसन्स का प्रोग्राम बनाते हैं। यानी सच जो है ना, एक तो उसमें बहुत थोड़ा होता है, दूसरा ये कि इनको पता भी नहीं होता कि क्या चीज सच है क्या चीज झूठ है, क्योंकि जो शयातीन है ना, ये शयातीन जो खबरें सुन करके आते हैं ना, ये इन लोगों को पूरी सही सही नहीं बताते, पूरी सच ये नहीं होता कि जी इनके इतने वफादार मुलाजिम हैं कि जो वहां से सुन करके आए हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक यहाँ पे सुना रहे हो, नहीं, ये ऐसा नहीं करते। ये शयातीन जो है ना, ये इंसानों के दुश्मन है, और सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, ये काफिरों के भी दुश्मन है। तो काफिरों के भी ये कोई वो नहीं है, हमदर्द नहीं होते हैं काफिरों के, क्योंकि काफिर भी तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही है ना, राइट। ये काफिर क्या है? कोई किसी और की औलाद है, ये भी तो बनी आदम है, जैसे मुसलमान बनी आदम है उसी तरह काफिर बनी आदम है। और इन जिन्नों को किससे दुश्मनी है? इन जिन्नों को मुसलमानों से दुश्मनी नहीं है, मोमिनों से दुश्मनी नहीं है, इन जिन्नों को बनी आदम से दुश्मनी है, बनी आदम से, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुसलमान हो, ठीक है ना। तो इस वजह से ना ये इन लोगों को पूरी सच सच खबरें नहीं आके बताते, बल्कि इनको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सच और बाकी झूठ मिक्स करके बताते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इन्होंने मिली जुली किस्म की झूठ सच इंफॉर्मेशन दे दी ना इन लोगों को, सिम्पसन्स कार्टून वालों को, तो उन्होंने उसकी बेसिस पर अपना प्रोग्राम बना लिया। इनको भी नहीं पता कि ये जो इनका प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में से कौन सी वाली बात सच होगी और कौन सी वाली बात झूठ होगी, इन्होंने तो बस प्रोग्राम बना दिया और उस प्रोग्राम को लाइव कर दिया। अब वो प्रोग्राम तो रिकॉर्ड होकर के रिकॉर्डिंग्स के अंदर मौजूद है ना। अब फ्यूचर में जा करके जब कोई ऐसा वाकया दूनुमा हो जाता है ना, जैसे ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं अमेरिका के, तो ट्रंप साहब इलेक्टेड हो गए, जब ट्रंप साहब जो है वो इलेक्शन में कामयाब हो गए ना, तो जिन लोगों ने सिम्पसन्स का कार्टून देखा हुआ था, वो वाला जिसके अंदर के उन्होंने ट्रंप के जीतने के बारे में बताया था, उनको याद आ गया कि यार ये बात जो हमने अभी देख, जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये तो सिम्पसन्स वाले पहले से दिखा चुके हैं। तो अब उन्होंने रिकॉर्डिंग को रीप्ले किया और उन्होंने जब उस प्रोग्राम को देखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली यही बात जो है वो सिम्पसन्स के अंदर आज से 10 साल पहले दिखाई जा चुकी थी, ठीक है, लेकिन वो कैसे दिखाई जा चुकी थी ये मैंने आज आपको समझाया, ठीक है ना। यानी ये जो काफिर हैं, ये काफिर जो हैं, ये कोई खुदा वाली इनके पास सिफत नहीं आ गई है, इनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं आ गई है कि जिसकी वजह से ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं, कुछ नहीं है इनके पास ये, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, ये बस यानी तुक्केबाजी जिसको कहते हैं ना, ये सारे तुक्केबाजी कर रहे होते हैं, कोई कोई तुक्का लग जाता है और बाकी नहीं लगते, ठीक है। तो इस वजह से ना कहीं हमारा जो है कि हमारी औलादों में से किसी का ईमान खराब ना हो जाए सिम्पसन्स कार्टून के बारे में पढ़ करके कि भाई सिम्पसन्स वालों ने जो है वो ऐसी ऐसी बातें प्रेडिक्ट करी थी और वो मनोअन जो है वो पूरी हो गई हैं, तो इनके पास कोई ना, यानी खुदा ना खास्ता कोई खुदाई ताकतें आ गई हैं लोगों के पास, ठीक है, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि हकीकत में ये हो रहा होता है कि ये शयातीन से जो है वो खबरें लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और शयातीन जो है वो फरिश्तों की बातों को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो वहां से सुनते हैं तो उसके अंदर खूब सारा झूठ शामिल करके फिर इन लोगों को बताते हैं और उन उसकी बुनियाद के ऊपर ये लोग अपने प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई सवाल है इस टॉपिक पर? अगर नहीं तो फिर हम क्लास खत्म करेंगे, लेकिन अगर कोई सवाल है तो बिना तकल्लुफ पूछ लें, अगर है तो बता दें क्या पूछ रही है, बिकॉज अदरवाइज मैं वेट नहीं करूँ। आपकी फिक्र की क्लास में भी फिर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया माजूद के साथ, तो अगर कोई सवाल बाद में किसी को तो व्हाट्सएप के ऊपर बाद में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके करूँ ताकि आप एक नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें, हर सब्जेक्ट के लिए अलग रिकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर।